أبو الإحسان المدعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. میرے دوست اور بزرگوں، آخرت کا خوف اور آخرت کا استحضار انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن جب تک آخرت کا استحضار اور اللہ کی ذات کا استحضار نہیں رہے گا تو انسان گناہوں سے نہیں بچے گا۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں مجھ سے اور آپ سے کتنا گناہ وجود میں آ رہے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ لئی سب نہ ترجمان، ہمارے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست ہم سب کی بات اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ فلا یرا یمینہ الا النار ولا یرا شمالہ الا النار، اپنی دہنی طرف دیکھے گا تب بھی اس کو جہنم نظر آئے گی، اور اپنی بائیں طرف دیکھے گا تب بھی اس کو جہنم نظر آئے گا۔ اور آخرت کا یقین تو ہر ایک کے دل میں ہے کہ باپ بادل موت ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن ہمارے اندر اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا استحضار نہیں ہے اور صحابہ میں آخرت کا استحضار تھا۔ ان سے جب کوئی معمولی گناہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر سزا کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے ان کو کوئی شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے، طائف من الشیطان، شیطانی وسوسہ بھی جب ان کو آتا ہے تذکروا، فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری یہ کیفیت نہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، سود کھایا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے، بدکاریاں کی جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، میراث کا مال کھایا جاتا ہے، لائف چوری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دوستو ہمارے اندر احساس کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس کو کہتے ہیں استحضار۔ کہ صحابہ میں آخرت کا استحضار تھا، تذکر فیضان مبصرون، وہ فوراً بیدار ہو جاتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یا رسول اللہ اس گناہ کے بارے میں جو حد ہم پر جاری ہونے والی ہے اس کو آپ جاری کر دیجیے۔ ایک تو آخرت کا یقین ہوتا ہے اور ایک تو آخرت کا استحضا ہوتا ہے۔ آخرت کا یقین تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا استحضار جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ چھوٹا گناہ بھی کرتے ہیں تو فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم پر بہت بڑا پہاڑ گر گیا، چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے تو ایسا احساس ان کو ہوتا ہے کہ ہم پر بہت بڑا پہاڑ گر گیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آخرت کا استحضار بتایا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ایسے تو نہیں تھے، بلکہ وہ ہماری طرح تجارت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اکثر کا تعلق تجارت سے تھا، اکثر کا تعلق کھیتی باڑی سے تھا۔ چند ہی صحابہ ایسے تھے جو رات دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے، جن کی تعداد حضرت امام قتادہ کے مطابق 900 ہے۔ سیکھنا تو ملے گا ہی اس میں، پاک علیہ السلام کی صحبت میں کبھی زبانی یاد کرنے کے لیے جائیں گے تو زبانی یاد کریں گے۔ یہ صحابہ کا لشکر، باقی اکثر و بیشتر صحابہ، انصار کا مشغلہ کیا تھا؟ کھجوروں کے باغات میں رہتے تھے، کھیتیوں میں رہتے تھے، اور مہاجرین کا مشورہ کیا تھا؟ جو مدینہ منورہ کے بازاروں میں رہتے تھے۔ لیکن بازاروں میں بھی آخرت کا استحضار 100% ان کے دلوں میں تھا۔ بازاروں میں وہ ہوتے تھے تو ہنسی مذاق کی مجلسیں بھی صحابہ میں ہوتی تھی۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ کیا تم ہنستے بھی ہو یا آخرت کا استحضار بھی تمہارے دلوں میں ہوتا ہے؟ کہ ہم ہنستے بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مزاح بھی کرتے ہیں، آپس میں ہم مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہمارے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم ہنستے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، تب بھی پہاڑوں سے بھی مضبوط ایمان ہمارے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ یہ صحابہ کا لکھا۔ और इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं निजामदार कोई नहीं तिजारतु वला बैतुन अनजिक्रिल्लाह वजिकानिस सलात वजिकानिस सका यहाकून यौमन तसफन्नहु फीहिल कुलूब वल अफसार। ये इनके बारे में फरमाया, इनको निजाल कहा। ये हकीकत में निजाल कहलाने के लायक और मुस्तहिक ये लोग हैं जिनको सहाबा कहते हैं। निजाल वो निजाल है कि वो कारोबार में भी रहते थे, तिजारतों में भी रहते थे, लाकुल ही हिम, लेकिन ये तिजारतें आखिरत में इनको हासिल नहीं करती थी। वला बैउल फरीदो फरो इनको आखिरत से हासिल नहीं करती थी। जब नमाज का वक्त आता था मदीना मुनव्वरा में दुकानें फौरन बंद हो जाती थी और मस्जिदों में चली जाती थी। अल्लाह के जिक्र का वक्त आता था वो जिक्र में मशगूल हो जाते थे। वो ऐसा लगता था कि मस्जिदें जैसे मुसलमानों की मस्जिदें हैं वैसे मुसलमानों के पास आ रहे सूकुल मुस्लिमीना पर मुसल्लम मुसल्लीन। ये सहाबा के बारे में पढ़ा था, सूकुल मुस्लिमीना पर मुसल्लम मुसल्लीन, उनके बाजार ऐसे होते थे जैसे उनकी मस्जिदें। हमारे यहाँ का मामला बिल्कुल कि जैसे गफलत हमारे बाजारों में पाई जाती है वैसी गफलत हमारी मस्जिदों में पाई जाती है। कि जो बाजार का माहौल होता है वो बाद मरतबा मस्जिद का माहौल बन जाता है। कि जैसे वहां पर झूठ बोला जाता है मस्जिदों के अंदर भी झूठ की मजलिसें, गीबत की मजलिसें, एक दूसरे की उड़ाना और इसी तरह। मतलब हम सब जानते हैं कि हमारी मस्जिदों में क्या होता है, लेकिन इनके बारे में फरमाया सूकुल मुस्लिमीना का मुसल्लम मुसल्लीन, उनके बाजारों का माहौल भी ऐसा होता था जैसे उनकी मस्जिदों का माहौल। इसको कहते हैं इस्तेहजार आखिरत, या आखिरत का इस्तेहजार। इसीलिए कुरान करीम ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो आखिरत पर जोर दिया है। कि लोग कयामत को बहुत दूर समझते हैं कि अभी तो हमारी नफ्स जिंदगी है, वो जिंदगी तो अभी आने वाली है, वो बहुत दूर जिंदगी है। कुरान कहता है कि वो जिंदगी दूर नहीं है, तुम इसको दूर देखते हो, हम इसको करीब देखते हैं। इन्नहु यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। लोग यूं समझते हैं कि आखिरत तो अभी आने वाली है, वो तो उजाड़ जिंदगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इसको बहुत दूर देखते हो, व नराहु करीबा, हम तो इसको बहुत करीब समझते हैं कि बिल्कुल आ रही है तुम्हारे। इसीलिए फरमाते हैं कि कयामत दो है, एक तो कयामत कुबरा और एक तो कयामत सुगरा। कयामत सुगरा का माना इन्ना इंसान इदा माता पद पाहत कियामत। इंसान जब मर जाता है तो इसका ताल्लुक दुनिया से खत्म हो जाता है, उसको यूं समझना चाहिए कि मेरी कयामत कायम हो गई। छोटी मोटी कयामत तो वही है जिसको आलम बरज़ख की कयामत कहा जाता है। वहां पर सवाल और जवाब होते हैं, इंसान के लिए वही एक कयामत है और बड़ी कयामत को कायम होगी उसके बाद। फिर आगे फरमाते हैं जगह इन्ना अंतरनाकुम अदाबन करीबा, करीब अजाब आने वाला है, हम तुमको डराते हैं करीबी अजाब से। वो करीबी अजाब कौन सा है? वही आखिरत का अजाब। तो आखिरत को अल्लाह ताला करीब बताते हैं, इंसान इसको बहुत दूर समझता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत करीब है। एक जगह फरमाते हैं وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ। اي محمد صلى الله عليه وسلم आप लोगों को डराओ, हसरत का दिन आने वाला है। हसरत का माना अफसोस, वहां पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। وَأَنذِرْهُمْ तो कयामत को यौमुल हसरत भी कहा जाता है कि ये हसरत का दिन है, इंसान हसरत करेगा, लेकिन वहां पर हसरत कोई काम नहीं आएगी। वहां पर तो इंसान के अच्छे बुरे आमाल उसके साथ रहेंगे। एक जगह फरमाते हैं यौम यजमउकुम लियौम जमअ दालिका यौम तमाम। बाजी ले जाने का दिन है या बाजी हार जाने का दिन है। सूरत तमाम कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत तमाम। तमाम का माना बाजी ले जाने का दिन या बाजी हार जाने का दिन, जीत का दिन या तो हार का दिन। बाजू के लिए कयामत का जो दिन होगा वो जीत का दिन होगा और बाजू के लिए कयामत का जो दिन होगा वो हार का दिन होगा। तो फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाह ताला इनको जमा करेगा वो दिन कौन सा होगा? यौम तमामुन, वो या तो बाजी ले जाने का दिन होगा या तो बाजी हार जाने का दिन होगा। हम सब देखते हैं कि जब कोई भी मैदान में दो टीमें आपस में टकराती हैं और जब इनका आखिरी मुकाबला होता है तो बाजों के चेहरे पर मशा सिर होती है, मसरत होती है और बाजों के चेहरे एकदम मर जाते हैं। इनको कहते हैं कि इनके लिए भी तमाम कठिन है, इनके लिए भी तमाम कठिन है कि ये लोग बाजी ले गए और ये लोग बाजी हार गए, ये मैदान जीत गए और ये मैदान हार गए। तो ये तो छोटे छोटे मैदान है जो इस वक्त दुनिया में कायम होते हैं, हकीकत में बड़ा मैदान जिसको कुरान ने अत्तावाहुन कहा। एक जगह कुरान में फरमाते हैं अल्हाफत मल्हाफत वमा अदराक मल्हाफत, इंसान को याद दिलाता है कि हर वक्त आखिरत को अपने सामने हमें रखना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, कि आखिरत सामने होगी तो फिर मस्जिदों में भी दीन कायम नहीं होगा, फिर हमारे बाजारों में भी दीन कायम होगा, हमारे मामला जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये चीज जब सामने होगी आखिरत का इस्तेहजा, तो उस वक्त इस्लामी माशरत के मुताबिक हम रहेंगे और इस्लामी मामला के मुताबिक हमारे मामला होंगे, खयानत भी नहीं होगी, धोखा भी नहीं होगा, गबन भी नहीं होगा, एक दूसरे के बदभाव भी नहीं होंगे, बल्कि मुसलमान मुसलमान के साथ तो क्या गैर मुस्लिमों का भी खैरखा बनकर मुसलमान जिंदगी गुजारेगा। लेकिन ये इस तहकार आखिरत के साथ है, खाली आखिरत का यकीन नहीं है, आखिरत का यकीन तो मुझे और आप सबको है कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, लेकिन मसला जो है वो इस तहकार आखिरत का है कि अल्लाह ताला एक एक के बारे में सवाल करेंगे और तनहा तनहा और एक को लाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि जमात की शक्ल में लोगों को लाया जाएगा, बल्कि बरबर जी तुमना पुराना तमा कल्पना तुम अव्वल मर्रतिन, हर एक को तनहा तनहा हमारे सामने लाया जाएगा और तनहा तनहा एक का हिसाब किया जाएगा। कैसे हिसाब किया जाएगा? वो कफा बिना हासिबीन, हम हिसाब लेने वाले काफी हैं, किसी दूसरे को हिसाब लेने की जरूरत नहीं है। वो कफा बिना हासिबीन, हम अकेले ही तुम्हारा हिसाब लेंगे, किस तरह हिसाब लेंगे वो जानता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है कि अल्लाह ताला जब किसी के हिसाब में पकड़ कर लेगा वो तो हलाकी हो जाएगा, इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के सामने आसान हिसाब की दुआ मांगनी चाहिए, और अगर हिसाब आसान नहीं होगा, पूछा या रसूल अल्लाह आसान हिसाब किसे कहते हैं, आसान हिसाब किसे कहते हैं, कहा कि बस गुजर जाओ, जैसे बार मरतबा ट्रेनों का लोग सफर करते हैं या ये कि बसों का सफर करते हैं, तो बाकी लोगों का चेहरा देखकर ही कहते हैं कि भाई तुम्हारी आईडी हमें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरों पर इतनी मासूमियत नजर आती है कि हम तुम्हारी टिकट देखते हैं, क्योंकि ट्रेनों का वगैरह का कायदा होता है कि भाई टिकट बताओ और उसके साथ तुम्हारी जो आईडी है प्रूफ है वो भी बताओ, लेकिन बाहर लोगों की आईडी नहीं देखते, उनके चेहरे को देखकर कहते हैं भाई चले जाओ चले जाओ। कस्टम होता है तो सामान ही देखते हैं कि इनके सामान में क्या होगा, हमने 30 किलो वजन लाने का कहा था, इनकी झोली इतनी मुख्तसर है कि दो तीन कपड़ों की थी और कुछ हमें नजर नहीं आता, चले जाओ चलो निकलो निकलो, पांच मरतब इस तरह होता है। तो कयामत के दिन आसान हिसाब उसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला छोड़ देंगे, निकल जाओ निकल जाओ, चेहरे देखकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर पकड़ हो गई मंडू ईशा पकड़ हलकर, हुजूर पाक अलैहि सलातो वसलाम के अल्फाज है मंडू ईशा पकड़ हलका, अगर किसी के हिसाब में जरा भी तफ्तीश की गई वो तो हलाकी हो जाएगा, इसलिए कि कोई भी हिसाब नहीं दे सकेगा अल्लाह के साथ, इतनी तकाय होगी। तो आप अलैहि सलातो वसलाम ने ये मसला बताया, वलकद जिदुना फुरादा कमा खलकनाकुम, हरेक को लाया जाएगा, हरेक को लाया जाएगा और बर्तन बर्तन लाया जाएगा और हरेक का हिसाब होगा। इसलिए कुरान करीम ने और अहादीस में खोल कर इसको बताया, अल्हाफत मल्हाफत, हाफा का माना साबित शुदा चीज, अरबी जबान में हक पर यहिक को ये लफ्ज आता है, इसी से निकला है अल्हाफत, कि किसी चीज का साबित करना। तो अल्हाफत मल्हाफत का माना साबित शुदा चीज, कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यकीनी चीज है और बिल्कुल साबित चीज है। और एक जगह इसको फरमाते हैं तुम लतरौनहा عین الیقین, आइनुल यकीन के तौर पर तुम आखिरत को देखोगे और जहन्नम को देखोगे, कि अभी वो वही के जरिए ये मसला, इस मसले का यकीन हमने कर लिया कि आखिरत आने वाली है, जहन्नम भी है और इसी तरह जन्नत भी है, फरिश्ते भी है, सब कुछ है, लेकिन फरमाया तुम लतरौनहा عین الیقین, जब कयामत का दिन होगा आइनुल यकीन के तौर पर इसको तुम देखोगे। यकीन के तीन किस्में उलमा ने बयान, एक को इल्मुल यकीन कहा जाता है, एक को हक्कुल यकीन कहा जाता है और एक को ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसकी मिसाल मसलन ये है कि हम सब जानते हैं कि आंख जो है आग वो जला देती है, ये तो हमारे इल्म में बात है कि आंख की खासियत क्या है कि वो जला देती है, इसको तो कहते हैं इल्मुल यकीन कि आंख जला देती है। और एक तो है हक्कुल यकीन, यकीन का भी जरा आना दर्जा, मतलब मैं किसी को आग में जलता हुआ देखता हूँ, मैं तो नहीं जला लेकिन किसी को मैं देखता हूँ कि वो सही सालिम अल्लाह का बंदा था लेकिन आग में चला गया, आग ने उसको जला दिया, इसको कहते हैं यकीन का दूसरा दर्जा जिसको कुरान की और हदीस की इस्तिलाह में हक्कुल यकीन कहा जाता है। और तीसरा जो दर्जा होता है जिसको ऐनुल यकीन कहा जाता है कि मैं खुद आग में पड़ गया और आग ने मुझे जला दिया। तो पहले तो मुझे इल्म था, फिर इल्म में थोड़ा सा इजाफा हुआ, यकीन में थोड़ा सा इजाफा हुआ कि सामने वाले को आदमी ने मैंने जलता हुआ देखा, और तीसरे नंबर पर यकीन का सबसे ऊंचा दर्जा कि मैं खुद आग में गया और मुझे पूरा तजर्बा हो गया कि आग जला देंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को किसी को फरमाते हैं कि लव पॉसिबल इदा मस्दद तो यकीन, कि हमें यकीन का इतना आला दर्जा हासिल हो गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर और आप की बातों को सुनकर यकीन का इतना आला दर्जा हमें हासिल हो गया है कि लव पॉसिबल इदा आलम आखिरत के सारे पर्दे हट जाएं, जन्नत भी हमारे सामने नजर आ जाए दुनिया ही में, और जहन्नम भी हम देखें, फरिश्ते भी हम देखें, उन सिरात भी हम देखें, मस्तक को यकीनन हमारे यकीन में सुई के बराबर भी इजाफा नहीं होगा कि हम बगैर देखे इन चीजों को ऐसा ही मानते हैं जैसा कि कोई आदमी देखकर मानता है, इसको इस्तेहजार आखिरत कहते हैं। और ये आखिरत का इस्तेहजार अबू बकर सिद्दीक में भी इतना ज्यादा था कि हजरत अबू बकर फरमाते थे कि काश के मैं दरख्त का पत्ता होता, बकरी चबा लेती, काश के मैं रेत का तिनका होता, काश में कोई जानवर होता, काश के में परिंदा होता कि मुझे हिसाब किताब देना न पड़ता। हालांकि वो अबू बकर सिद्दीक जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दुनिया में सुनाई थी, और आपने बताया कि जन्नत जो होगी एक जमान के सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े शख्स के अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक अलैहि अकीदा है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत आला शख्सियत है। नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी का है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। इतने बड़े होने के बावजूद फरमाते थे कि मुझे अपने ऊपर निफाक का डर लगता है, जहन्नम से डरते थे और कौम से हमेशा रोते रहते थे कि उनकी कैफियत, और हमारे असला और हमारे मुसलमान दीन की ये कैफियत थी कि हमेशा हर मामले में आखिरत का इस्तेहसार सामने रखना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को इतना आखिरत का इस्तेहसार था कि जब बाजार में भी जाते थे और कोई औरत जब इनसे कहती थी इत्तकिल्लाह या उमर, तो उमर अल्लाह से डर, आखिरत से डर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को ज़ारो कतार होने लगते थे। इतना जरी आदमी, इतना बहादुर आदमी और अदल इंसाफ में जरा बराबर कमी नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद जब कोई मामूली आदमी भी इनसे नसीहत करता था तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को ज़ारो कतार होते थे। ये सहाबा रजी अल्लाह तआला को मुजमईन का इस्तेहज़ार बयान किया जाता है, इस्तेहज़ार आखिरत बयान किया जाता है। हजरत बुरैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया आता है कि एक मरतबा एक औरत इनके पास आई कि हमारे बुजुर्गों में कितना इस्तेहज़ार था आखिरत का। एक औरत इनके पास आई और औरत ने आकर हजरत जुनेद से कहा, निकाह में थी वो मुर्गे में थी, हजरत जुनेद से कहा कि मेरा शोहर दूसरी शादी करना चाहता है, तो आप मेरे शोहर को बुलाकर समझाओ कि वो दूसरी शादी न करे। तो जुनेद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं कैसे इसको समझा सकता हूँ, आखिरत में तो चार शादियों की इजाजत है, मर्दों को चार की इजाजत है, तो अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो एक जायज मसले के अंदर, एक मबाह मसले के अंदर मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। तो इस औरत ने कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी, तो इस औरत ने हजरत जुनेद बगदादी के सामने ये कहा कि हजरत जुनेद, अगर शरीयत इस्लाम या इजाजत देती तो मैं अपना निकाब उठाकर मेरा चेहरा आपको बता देती कि मैं कितनी हसीन और जमील हूँ और मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कि ऐसी खूबसूरत औरत को देखकर मेरा शौहर दूसरी शादी क्यों करना चाहता है, कि क्या उसको मेरे ऊपर कबर नहीं आता कि मैं इतनी हसीन और जमील हूँ। जब ये औरत ने झूठा कहा तो हजरत जुनेद बगदादी उसी वक्त बेहोश हो गई, ये औरत भी घबरा गई और घबरा कर जगह छोड़कर चली गई। फिर बाद में जब हजरत जुरैद को होश आया तो इनके मुरीदीन जो पास में बैठे हुए थे, इनके लोग जो बैठे हुए थे, तो हजरत जुरैद से पूछा कि हजरत इस औरत ने तो अपना मसला तुम्हारे सामने रखा, आप मसले का जवाब दे देते कि शादी वो कर सकता है तुम्हारा शोहर, लेकिन आप पर बेहोशी तारी हो गई। तो हजरत जुरैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि इसके इस जुमले पर मुझे हदीस कुदसी याद आ गई, इस औरत के इस जुमले पर मुझे हदीस कुदसी याद आ गई कि इस औरत ने मुझे ये कहा था कि मैं कितनी हसीन जमील और कितनी खूबसूरत औरत हूँ, मेरी खूबसूरती को छोड़कर वो दूसरी औरत से निकाह करने का इरादा करता है, तो मुझे हदीस याद आ गई कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से कहेंगे मैं कितना हसीन जमील था, मैं कितना खूबसूरत था, मैं उनसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता था, मैं तुझे कितनी खाने पीने की चीजें देता था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे छोड़कर दूसरों को अपनाया, ये हदीस मुझे याद आ गई। तो ये हमारे बुजुर्गों का इस्तेहसा है आखिरत का कि जब भी उनके सामने कोई दुनिया का मसला होगा और उनकी तवज्जो जो है वो आखिरत की तरफ जाती है। फजाइल अमाल की मशहूर फजाइल नमाज की एक रिवायत लिखी है कि एक सहाबी को एक मरतबा तिजारत में बहुत ज्यादा नफा हुआ, लोगों के सामने बता देते कि आज मुझे इतना ज्यादा नफा हुआ कि इतना नफा पूरी जमात में किसी को भी नफा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा इतना नफा हुआ, तो आपने फरमाया इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ी नफे की चीज बताओ कौन सी कि हर नमाज के बाद दो नफर पढ़ लिया करो, इससे भी ज्यादा नफा हो। तो आप अलैहिस्सलाम सहाबा के तमाम जो दुनियावी मसाइल हैं इन मसाइल में और आखिरत को ले आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब मसाइल में, मामलात में, माशरत में, बाजार में, अपने घरों में, मस्जिदों में आखिरत का इस्तेहज़ा रखें। यकीन अलग चीज है और आखिरत का इस्तेहज़ा अलग चीज है। आखिरत का इस्तेहज़ा भी हमें गुनाहों से बचा सकता है और आखिरत का जो इस्तेहज़ा है वही हमारे अंदर तक्वा पैदा कर सकता है और वही हमारे अंदर नेकी पैदा कर सकता है।